शांति, ओम शांति। आज का टॉपिक है दान और पुण्य, दो शब्द आता है। तो दान से भी पुण्य महान है, बड़ा है। तो दान क्या है और पुण्य क्या है? तो दान देते समय व्यक्ति दिखाई देता, मैंने किया, मेरा नाम होना चाहिए। और कुछ देते हो तो रिटर्न में, अरे मुस्कुराता नहीं है, ओम शांति नहीं कहता है, मुझे कुछ पुण्य मिलेगा, दुआएं मिलेंगी। तो दान करते समय दिखावा होता है। उदाहरण पूछेंगे आप, देखो राजस्थान से एक व्यक्ति ने आके मधुबन में कहा हमको कि बहुत बड़े कॉलेज खोलना है, 5 करोड़ रुपीस देंगे, आप कॉलेज खोलो, आप ही चलाओ, आप ही स्टाफ रखो, प्रिंसिपल सब कुछ आप करो, लेकिन नाम हमारा माँ बाप का होना चाहिए, कॉलेज के ऊपर नाम हमारा होना चाहिए उनका। 5 करोड़ रुपए जता, कॉलेज आप चलाओ। चलाएंगे? हमने कहा ये काम नहीं, नाम हमारा, उनका नाम, उनके नाम से हम चलाए, हम मेहनत करें, सब कुछ करो, आप करो। तो नाम के लिए दान, मंदिर बनाते हैं, डोनेशन देते लोग, उसके सब जगह पट्टी लगी रहती है, इन्होंने इतना दिया, इन्होंने इतना दिया। तो ये नाम के लिए करते हैं। तो अब भी कुछ चाहिए तुरंत, तो दान तुरंत मिलता है फल, तो ये दान है। तो दान बहुत लोग करना चाहते हैं भक्ति में। आज बाबा ने मुरली में भी कहा स्नेही और सहयोगी और सहयोगी और तपस्वी। स्नेही, स्नेह है ब्रह्मा कुमारी, बहुत अच्छा है। सहयोग देना चाहते हैं तन से और धन से, धन देंगे हम, कुछ सेवाएं तो कहो करेंगे, लेकिन ज्ञान योग नहीं। स्नेह है, बहुत अच्छा है, धन देंगे, जमीन देंगे, कुछ सही तन के सहयोग चाहे तो मदद करेंगे, तो स्नेही सहयोगी है। और दूसरा है सहयोग देते हैं, दान देंगे, जमीन देंगे, पैसा देंगे, आपको स्नेह नहीं है, क्योंकि धर्म दान करने की आदत है भारत के अंदर भी। आप देखेंगे सारे भारत के अंदर बहुत लोगों ने जो सेंटर्स बनाए हैं, आपने देखा सारा विश्व के अंदर, मारवाड़ी जो है उन्होंने बहुत जगह पर जमीन दिया है। और देखा गुजराती जो है सारे विश्व के अंदर धन की सेवा गुजराती करता है, सारे विश्व के अंदर, भारत इतना नहीं, सारे विश्व के अंदर टोटल निकालो आप, तो देखा गया जो जमीन मकान ये सारे कौन ज्यादा करके मारवाड़ी ने देखा दान करते हैं, दान करने के ज्ञान योग नहीं। और गुजरातियों के अंदर एक है कि सहयोग देने के, धन देंगे, हर प्रकार के मदद करेंगे। तब बाबा ने आज का स्नेही सहयोगी है, और एक लास्ट कहा तपस्वी। बाबा को, भगवान को तन धन नहीं चाहिए, योगी तो आत्मा चाहिए। इसलिए गीता में भी कहा 4 प्रकार के यज्ञ होते हैं। एक है लोक संग्रह अर्थ यज्ञ करते हैं, बहुत भीड़ लोग, 10,000 लोगों को इकट्ठा करना है, लोक संग्रह अर्थ, मेरा नाम होना चाहिए, मैंने किया। दूसरा है धन संग्रह अर्थ, हम यज्ञ करें आप ये दे दो, आप ये धन दे दो, धन संग्रह करने के लिए यज्ञ करते हैं। तीसरा है प्रतिष्ठा, जैसे राजा राम ने किया है ना, मैं राजा हूं इतना एरिया के अंदर, तो प्रतिष्ठा के लिए भी करते हैं। और तीसरा है ज्ञान अर्चन करने के लिए यज्ञ करते हैं। तब कहा ये मुझे प्रिय है, गीता में कहा कौन सा यज्ञ मुझे प्रिय है, तो ज्ञान अर्चन करने के लिए, ज्ञान की प्राप्ति के लिए। तो यहां भी बाबा भी कहता है मुझे योगी बच्चे चाहिए, उससे कलियुगी दुनिया को मैं स्वर्ग बना सकता हूं। धन दिया, भारत के अंदर कोई धन की कमी नहीं, तन मन तन धन दे सकते हो। मन चाहिए, स्वच्छ मन चाहिए, स्वच्छ दिल चाहिए। तो सच्चे दिल से आप शिव बाबा को जो याद करते हो, वो शक्ति चाहिए दुनिया को, ज्ञान भी नहीं चाहिए। तो बाबा कहते हैं मुझे योगी बच्चे चाहिए। तो इसलिए व्यवस्था है, दान करने वाले कौन, दिखाने के लिए करता है, मेरा नाम होना चाहिए। हमने एक सुन देखा प्रैक्टिकली, एक व्यक्ति ने सेंटर एक बन रहा था, एक सेंटर बनते समय बहुत लोगों ने धन दिया। एक बाबा का बच्चा पुराना है तो उसने भी धन दिया, और एक नए नो भी धन दिया, सेम सेंटर बन रहा बहुत बड़ा। लेकिन ओपनिंग पर किसको बुलाएंगे, नयों को उमंग उत्साह देंगे ना। भले उसने 500 रुपए दिया और इसने 5000 दिया, तो उसको बुलाया नहीं ओपनिंग पर। और ये 500 रुपए दे नया है, उसको उमंग उत्साह देना चाहिए। तो उसको लगा मैंने इतना किया और उसको बुलाया, मुझे ओपनिंग पर बुलाया नहीं, ज्ञान ही छोड़ दिया। तो किसके लिए दे रहा था, मेरा बाबा। आज बाबा ने कहा मेरा बाबा कहते हो, हमारा घर, हमारे घर वालों को थोड़ी कहेंगे, बाहर वालों को उमंग उत्साह देंगे। तो मेरा नाम मान, तो ये दान करने वाले हैं, तो अल्पकाल की प्राप्ति होती उनको एक जन्म के लिए। उदाहरण और देख लो, अब ये भाई ज्ञान में चलने से एक साल पहले घर के सामने कोई भी गरीब आया, साधु सन्यासी आया, उनको खाना देता था, दान करता था। अभी एक दो साल हो गया ज्ञान सुना, लेकिन वो व्यक्ति तो वही है, उसके घर के सामने जो गरीब साधु सन्यासी जो भी आता वो भी वही है। पहले भी एक खाना देता था, अभी भी दे रहा है, दोनों में अंतर क्या है? ये व्यक्ति तो यही है, भाई तो यही है, पहले भी खाना देता था गरीबों को, अभी भी ज्ञान सुनने के बाद भी दे रहा है। अब बाबा ने कहा अभी ये पद्मा पदम भाग्यशाली बन रहा है, पहले नहीं था, पहले भी दान देता था, अंतर क्या है? कोई इच्छा नहीं खाना, पहले कोई आया किसी को भी हो, गरीब हो कोई भी, दान देता था, अभी भी दे रहा है, अंतर क्या है? कौन बताएगा? भावना, क्या भावना थी? पहले भी थी दान करना चाहिए, कोई भी गरीब आया खाली हाथ जाना नहीं चाहिए, अभी भी कोई सामने आया खाली हाथ जाना नहीं चाहिए, दान देना चाहिए। अभी सीता की भी अच्छी भावना थी ना, ना परमात्मा तो नहीं देता था, देता तो यही है। सीता ने, सीता को कहा लक्ष्मण ने बाहर जाना नहीं, सीता की अच्छी भावना थी ना, दान करना चाहिए। तो अंतर क्या हुआ अभी? हाँ, अब आया, पहले वो दान देता था, ये फकीर है उसके शरीर को देखता था, ये गरीब है ये साधु है, शरीर को देख के दान देता था, एक का एक गुना मिलता था। और अभी वही व्यक्ति आता है और ये भी वही है, लेकिन इसको एक ज्ञान मिला कि यहां जितने लोग बैठे हैं ये सारे शिव बाबा के, रावण के कोई बच्चा नहीं इस दुनिया में, सब शिव बाबा के बच्चे, परमधाम से आए थे, ये ज्ञान बैठ गया। तो वो जब साधु या गरीब आता है, अरे ये भी तो शिव बाबा का बच्चा है, शिव बाबा याद आया और दान दिया, पद्मों की कमाई जमा हो गई। तब बाबा ने कहा गृहस्थ में रहो, संसार में रहो, सब कुछ करते रहो, हर संकल्प हर कर्म मुझे याद करके करते हो, पद्मों की कमाई। क्यों? चमत्कार नहीं है, जादू नहीं। इधर शिव बाबा कौन? अविनाशी है, वो जो देता है वो अविनाशी है, एक दिन के लिए नहीं। बाकी कोई भी देगा, सवेरे खाना देगा, शाम के लिए भी देंगे, शाम के लिए भी खाना रख दो, देंगे नहीं, शाम को भी भूख लगेगी। तो शिव बाबा जो देता है भगवान निराकार अविनाशी है वो, तो एक जन्म दो जन्म के लिए नहीं, सारे कल्प के लिए देता है। तब कहा भाग्य विधाता है। आज बाबा ने उसके लिए मुरली में कहा सिर्फ मेरा बाबा कहो। बाबा कहेगा मैं आपका हूं। भाग्य विधाता को आपने अपना बनाया तो सारा आपका भाग्य बन ही जाएगा। भाग्य विधाता को अपना बनाओ, मेरा बाबा, आप मेरे। बाबा ने कहा मैं आपका हूं। कौन हो? भाग्य विधाता सारे सृष्टि के आत्माओं की, मेरा सब कुछ भाग्य बनाएगा। तो भाग्य विधाता को अपना बनाया। तो यहां भी कर्म वही है, सिर्फ स्मृति, स्मृति में है ये शिव बाबा का बच्चा है। शिव बाबा को याद कर हर संकल्प हर कदमों में पदम समाये हुए का, हर कर्म कोई भी कुछ करो, कोई संकल्प भी करो तो उसमें पद्मों की कमाई जमा होती है। सिंपल, तब कहा है सहज राजयोग है। भगवान मेहनत करना नहीं सिखाता है, सहज संसार में रहो, सब कुछ करते रहो। मंजूर, सही है कि नहीं कि बहुत कुछ करना चाहिए? तो इतना सहज है। अब आया पुण्य क्या है, दान समझ में आया? अगर स्मृति में रख कर कुछ दान करते हो, मैं ही नहीं कर रहा हूं, जैसे माता जी ने कहा शिव बाबा दे रहा है, लेकिन उधर शिव बाबा तो नहीं, मैं दे रहा हूं मेरे पास, लेकिन शिव बाबा की याद, ये भी शिव बाबा का बच्चा है। शिव बाबा को याद किया आपने कि देता तो कहीं जगह ने कहा कि शिव बाबा आप दे रहा है, मैं नहीं, मेरा नहीं कुछ, वो भी ठीक था, ठीक है फिर भी, लेकिन सभी को ऐसा नहीं होगा मैं कर रहा हूं। हाँ, शिव बाबा को या शिव बाबा ने कहां दिया, ये भी विचार आ सकता है। भगवान कहां देता है? अगर वो दुख भी देता है, फिर अगर आप कहेंगे क्यों मैंने ऐसे कहा, अगर आपने दान करते समय कहा, अगर उसने दुरुपयोग किया, वो भी आपके ऊपर आएगा। पात्र को देख कर दान करो। अभी सीता ने अच्छी भावना से दान किया था, भगवान तो भगवान को पता नहीं था, उसने रोकना चाहता नहीं, रावण लेके गया ना। अच्छी भावना से भी दान करो, तब एक व्यवस्था है दान करते समय, पात्र को देख के दान करना। अभी पात्र को कैसे देखेंगे आप? सीता कोई साधारण नारी नहीं थी, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की धर्मपत्नी थी, उनको नहीं पता चला ये रावण है कि साधु है? और आपको और हमको कैसे पता चलेगा? अगर सेंटर में रोज जाते हो, ये भाई आएगा और आपको कहे इनके पास बहुत पैसे है, क्योंकि मेरे बच्चे बीमार है, वाइफ को हॉस्पिटल में डालना है, 1,00,000 रुपए दे दो, कल देता हूं, तो क्या करेंगे? नहीं देंगे आप? और कल दिया, आज दिया, अभी 10 साल हो गए देता ही नहीं है, और लड़ाई झगड़ा करता है, कोर्ट में जाओ, तो क्या करना चाहिए? कोई कहेंगे आपको पता नहीं था क्या, देख के नहीं दिया आपने, तो कैसे देखो? परखने की शक्ति कैसे आएंगे? किसी के पास है? हाँ, तो बाबा को याद करो तो होगा, परखने की शक्ति आएंगी, बाबा कराएगा, परखने की शक्ति अलग है, कौन बताएगा? आप कहेंगे बाबा को याद किया शिव बाबा, तो उसको आपका हाथ रोकेगा, नहीं दे दो ऐसे कहेगा, ऐसे कहेगा? तो बाबा को ऐसा बनाया, भगवान आपको हर जगह पर रोकेगा, तो अभी गुस्सा करने वाले को भी रोकेगा, गलत विचार करने वालों को भी बाबा रोकेगा? नहीं, तुम्हारा कर्मों की गति। तो अब आप बताओ, परखने की शक्ति अलग है, उसकी विधि बाबा ने बताया, किसी को पता है? और आज चाहिए, कोई मिलती नहीं है, सिंपल है, बहुत दफा सुना आप लोगों ने लेकिन समझा नहीं, क्योंकि बहुत दफा गुलजार दादी भी बोलती है, देख लो पानी भी हाथ में आया, बाबा को याद कर, शिव बाबा आप पानी पिला रहे हो। खाना आया तो शिव बाबा को याद, बाबा आप खाना खिला रहे हो। दृष्टि दे दो, कहा पानी को, दृष्टि सिर्फ दृष्टि नहीं काम करती है, स्मृति, मैं कौन? अभी जैसे ये भाई आया सामने, बहुत अच्छा, ट्रेन में जाते हो, कोई बहुत अच्छा ज्ञान सुनाया, बहुत प्यार से बात कर रहे, फिर कहेंगे भाई जी ये थोड़ा खाना खा लो, ये दे दो, तो क्या करेंगे? खाएंगे आप? नहीं खाएंगे? बहुत अच्छी तरह से बात किया, ज्ञान सुनाया, संबंध में बहुत अच्छा व्यक्ति है, तो वहां कैसे परखेंगे? संबंध संपर्क में आते, घर में आप अकेले रहते हो, कोई आता है गाड़ी वाला और कोई, कैसे परखे? तो उसके लिए बाबा ने बहुत सुंदर एक तरीका दिया है। आपके सामने आज ही कोई भी आता है, कोई बहन आया, भाई आया, बाबा के बच्चे, कोई भी आते ही आप उसको दृष्टि दे दो। तो दृष्टि कैसे देंगे? ये दृष्टि नहीं, सिर्फ देखते रहना नहीं, स्मृति चाहिए। मैं कौन? मैं सर्वशक्तिवान शिव बाबा का बच्चा हूं, ये समझ कर अगर एक सेकंड बात करते करते दृष्टि दे दो। अरे भाई, दृष्टि हिलाता नहीं है, दृष्टि से दृष्टि देता है। तब समझना दिल साफ है, अच्छी तरह से बात करो, सहयोग दे दो। अगर एक सेकंड जब मिलता है सामने, अगर दृष्टि, स्मृति होनी चाहिए, मैं कौन? मैं राजा हूं, मैं सर्वशक्तिवान शिव बाबा का बच्चा हूं, ये समझ कर स्मृति में रखते हुए दृष्टि देते हो, और वो दृष्टि हिलाता है, इधर उधर देखता है, थोड़ा नीचे देखता है, इधर देखता है, तब कहना दाल में कुछ काला है, संभल के नजदीक जाओ, आज चाहिए। इतनी सिंपल चीज है। तब बाबा ने कहा दृष्टि की विधि इसीलिए रखा है। तो बहुत प्रकार के अंदर एक बाहर एक होते हैं, कोई दिल का साफ है नहीं, कैसे पता चलेगा? ये महाभारत में आता है, भीष्म पितामह को अंतिम में तीर की शैया पर सुलाया, तीर चुभ रहे थे, उन्होंने पूछा, श्री कृष्ण खड़े थे, कि मैंने बचपन से आज तक किसी को दुख नहीं दिया है, मुझे क्यों? तब कहा कि आप रथ चलाते थे, रथ के चक्के के नीचे सांप आया, आपका मनसा स्वच्छ थी, हिंसा नहीं करनी है, उठा के बाजू में किया, रस्ते के बाजू में कांटे के झाड़ होती है, आपका दिल साफ था, अच्छा था, कि हिंसा नहीं करना है, बचाया आपने, लेकिन कहां गिरा वो? तब दान आपने, सीता ने अच्छी भावना से दान किया, गलत भावना नहीं थी, दान करना चाहिए, कोई साधु खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, उसकी भावना कोई गलत नहीं थी, भावना के साथ। तो दान करना, परखने की शक्ति भी चाहिए, विवेक चाहिए, बुद्धि चाहिए, समझ चाहिए, मैं किसको दान कर रहा हूं, ये क्या करेगा? अगर इसको आपने 10 रुपया दिया, गरीब है, गाड़ी में जाते हैं वो बार बार ठक ठक करता है ना, जब सिग्नल आता है तो आप समझते हो 5 रुपए दे दो, उसने शराब पिया, उसने तंबाकू खाया, उसका फल भी आपके ऊपर आएगा। तो ज्ञान दान नहीं करना चाहिए, करना चाहिए। अगर गरीब है, केला खाने फल दे दो, नहीं तो नहीं दे दो, पैसे का दुरुपयोग कर सकता है, फल का नहीं, कपड़े नहीं है कपड़े दे दो, कोई गरीब है बीमार है हॉस्पिटल में डालो, पैसे नहीं देना, मैं बिल देता हूं, आप हॉस्पिटल में जाओ। तो तरीके हैं। तब कहा कि दान करना इतना पता है, परखने की शक्ति चाहिए, सिंपल। आज की दुनिया में बाबा ने इतना सहज करके दिया, साधारण, कोई ज्ञान योग भी नहीं, कोई भी सामने आवे देखते ही एक सेकंड, उसको भी पता नहीं चले, 2-3 मिनट दृष्टि देते नहीं रहना, एक सेकंड देखना, वो दृष्टि से दृष्टि मिलाता है, हिलाता नहीं दृष्टि, तब सबने इनका दिल साफ है, अच्छी तरह से बात करो, सहयोग दे दो। अगर किसी को देखते हो तो तुरंत इधर उधर देखता, नीचे करता है दृष्टि, दिल साफ नहीं है, संभाल करके नजदीक जाओ अपने को। ये समझ बाबा देता है बच्चों को, कलयुग है ये, युक्ति बताता है। इस घोर कलयुग में हर प्रकार के लोग हैं, संबंध संपर्क में आएंगे, तो बच्चों को कैसे चलना चाहिए? संसार में रहना, संसार छोड़ना नहीं, सब प्रकार के हैं, गृहस्थ में रहते हुए कमल फूल बहुत कुछ कहा, उसकी विधि बताया, पद्मों की कमाई जमा कर सकते हो, हर संकल्प हर कदम, सवेरे उठते खाना बना रहे हो, बाबा आप क्या खाएंगे आज, आपके बच्चों को क्या खिलाओ, मेरे बच्चे नहीं, सिर्फ इतना संकल्प, बाबा आपके बच्चों को क्या खिलाओ, बाबा आपको भोग लगाना है, आप आज क्या खाएंगे, सिंपल। हर संकल्प कदम, एक कदम का पद्मों की कमाई जमा होंगी, बहुत कुछ करने नहीं जाओ। एक तरीका, दान कैसे करना चाहिए, समझ में आया? कि दुविधा है कुछ? दुविधा है तो प्रश्न पूछना बाद में, 5 मिनट रखेंगे, पहले एक एक बात स्पष्ट हो, ठीक है। अब आया पुण्य क्या है। हां, पुण्य वो है जो दिखावा नहीं, दिखाई नहीं देता है, और उसको पद्मों की कमाई जमा होती है, दिखाता नहीं, गुप्त। ये तब कहा इस हाथ से दिया हुआ दान इस हाथ को पता नहीं चलना चाहिए, गुप्त दान। मेरा नाम नहीं, कौन नहीं, कुछ पता नहीं, सब कुछ कर रहा है। आप कहेंगे ऐसे कोई उदाहरण है? हां, बहुत उदाहरण है। तो एक उदाहरण जी पहले पूछेंगे, पहले सुन लो फिर पूछना। हां, लेकिन आपकी बुद्धि में वो चाहिए, पहले स्मृति चाहिए। मैं शिव बाबा का हूं, बाबा ये भी आपका दब कहा, एक उदाहरण दिया। जब ये आया पहले भी दान देता था, अभी भी आया, तो वो पहले शरीर को देखता था, गरीब है ये, भिकारी है, अभी ये शिव बाबा का बच्चा है, शिव बाबा याद आए, स्मृति में आई, तो पद्मों की कमाई। इसलिए इतना सिंपल चीज है। अब आया धन, तो ये पुण्य क्या है। जैसे उदाहरण बहुत देता है, देखो ज्ञान सरोवर बना, मधुबन बना, शांतिवन बना, सब जगह पर। एक साधारण माता एक दफा आई मधुबन में और कहा किसी को बताना नहीं कि मधुबन ओम शांति वन बन रहा था, तो इसको जितना पेंट लगेगा तो मैं भेजना चाहती हूं, किसी को बताना नहीं। हमने कहा पति भी, पति को बताना पता है? हाँ, सब उनका पेंट का बिजनेस है, एजेंसी है, हस्बैंड एंड वाइफ और एक ही लड़की थी। अभी मैं किसी को बताने मैं कैसे करूं, तो मैंने दादी के कान में डाला, दादी ऐसे एक माता है वो कहती ओम शांति भवन बन रहा है, इसको जितना पेंट लगाएंगे, लेकिन वो कहती किसी को बोलना नहीं, कौन है वो। हमने दादी को दिखाया, दादी ने कहा ठीक है, पति को पता चलेगा? हाँ, पति को कुछ नहीं, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, तुम जो चाहे करो। ओम शांति भवन को जितना पेंट लगा किसी को पता नहीं, मेडिटेशन हॉल में लगा, ज्ञान सरोवर बना, शांतिवन बना, दिल्ली ORC बना, सारे एक स्टेट है, सारे स्टेट में कहीं भी सेंटर बनता है, वो पेंट का काम वो भेज दो, उसका पति भी दानी कर, दोनों। किसी को भी आज तक भी आपने कभी सुना नहीं होगा उसका नाम भी, ना उसने कभी भी मुझे मधुबन आने के बाद कुछ मिलना चाहिए, मुझे ऐसा होना चाहिए, मेरा नाम किसी को भी आज तक पता नहीं होगा। इवन ORC तक उसने भेजा, गुप्त। इसको कहते हैं पुण्य। इतना ही नहीं, और आता हूं, पुण्य क्या है देख लो। अभी एक कुमार है, अभी वर्तमान बॉम्बे में एक कुमार है, उसने एक साल पहले कहा मधुबन वालों को कोरोना के कर समय पर मधुबन में कोई आ नहीं सकता है। उसने फोन किया मधुबन वालों को, सबको ऐसा आम खिलाने, एक आम कम से कम 500 रुपया के एक, एक उस समय, और ऐसे समय पर फोन करता हो। हमने कहा अभी आप आम लेके नहीं आ सकते हो, कैसे देंगे? नहीं भाई जी, तभी तो आपको पूछा क्या उपाय। हमने कहा अभी इतना जल्दी फरवरी महीना है, अभी आम तैयार भी नहीं, नहीं वो एक जगह मिलता है गोवा में, कितना भी कॉस्ट दे दो, मुझे अब भी खिलाना है। हमने कहा और 15 दिन ठहरो, कोरोना बीमार भी ठीक हो जाएंगे, गेट खुलेगा, अब अंदर आ ही नहीं सकते। अगर कोई ट्रक लेके आएगा तो उतारने के लिए लेबर भी चाहिए, और आपको भी वहां से लाने के लिए चाहते, भाई जी मैं वो व्यवस्था करता हूं, लेकिन मेरी इच्छा है अब भी खिलाना है। और उस समय एक आम 500 रुपए का था, और उसने विचार किया, गया मार्केट में और तुरंत एक ट्रक से आम आया था, कहां से, उसने पूरा ट्रक लिया और कहा भाई जी ट्रेन से भेज रहा हूं, आप स्टेशन पर उतार लो। अभी क्या करो, चलो आ गया हो गया, किसी को पता ही नहीं कौन है। इस साल भी कहा, इस साल भी हमने कहा थोड़ा ठहरो, बहुत कॉस्टली है, एक 15 दिन के बाद, नहीं अभी, कोई किसी को पता, इस साल भी इसने ऐसे ही किया, गुप्त, किसी को पता ही नहीं, एक को भी पता नहीं वो कौन व्यक्ति है। फोन एक किया, उसका नाम नहीं, मुझे इधर आने के बाद बाबा से मिलने के लिए चाहिए, कमरा चाहिए, ये चाहिए, कोई नहीं, ऐसे गुप्त दान करने वाले हैं। इतना भी नहीं, और भी बताता हूं आपको, कितने लोग गिनती करना है। दान पुण्य क्या चीज है। आप कभी मधुबन आए होंगे 18 जनवरी को, तो आपको एक फल मिलता है किन्नू, देखा आप लोगों ने, हर साल मिलता है सभी जगह पर। और वो कौन है, कभी किसको आपने सुना, वो कौन है, एक साधारण घड़ी रिपेयर करने वाला व्यक्ति, साधारण व्यक्ति। आज 25 साल पहले वो माल्टा कहते थे उस समय, किन्नू माल्टा, एक जगह पर गंगानगर में राजस्थान में बनता है, वो थोड़ा सा लेके आया था। तो दादी ने देखा ये संतरा भी नहीं, मौसम भी नहीं, ये क्या चीज है। तो किसी ने कहा दादी एक भाई आया वो लेके आया, उसको बुलाओ। अरे ये क्या है, खाने की है कि क्या है ये? दादी ये गंगानगर में बनता है और वहां इसको माल्टा कहते हैं, इंग्लिश में किन्नू कहते हैं। अच्छा, दादी को अच्छा लगा। दादी ने उसको बुलाया कि अभी विदेशी आने वाले हैं, आप जाने के बाद 100-200 पीस भेजना। उसको लगा मैंने थोड़ा सा 1-2 किलो लाया, और मधुबन में बाबा को अच्छा लगा, दादी को अच्छा लगा, मेरा भाग्य, गया भेजा। उस दिन से उसने संकल्प किया, हर साल 18 जनवरी को तीनों जगह पर जितने भी लोग होंगे बाबा के, उनको सबको एक फल देना है। किसी को पता नहीं है वो कौन है क्या है, और वो भी किसी को बताता नहीं है। मुझे आके हर साल कहता है, 2 साल पहले उसने कहा एक किन्नू 3.5 रुपए को एक है। मार्केट में जाता, जंग इसमें बगीचे में जाता है, ट्रक का ट्रक भर के, और कोई करोड़पति नहीं, साधारण व्यक्ति है। बाबा के ऐसे गुप्त साधारण बच्चे कैसे कमाए पद्मा पदम, भाग्यशाली बनते हैं। भाग्य कैसे बनता है, पुण्य कैसे बनता है। हमने उसको कहा, बाबा के कमरे में, बाबा के टर्न भी आता है वो, पीछे बैठा था। हमने कहा अरे इसको आगे, नहीं नहीं मेरा नाम नहीं लेना, मुझे नहीं जाना, स्टेज पर बाबा से मिलो, नहीं बोलना। अभी ऐसे बोलता था मैं, वो भी उसने मना किया था, किसी को बोलना नहीं। अभी अभी मैंने कहा पुण्य क्या है कभी तो बताओ, कौन कर रहा है। आप कहेंगे इतने, अभी भी एक एक माल्टा, उस समय 2 साल पहले कहा था उसने 3.5 रुपए को एक, 25,000 लेके आया। अभी भी इस साल भी मुझे 35,000 कितना कहा, कितना कॉस्ट, कहां से। बाबा के ऐसे गुप्त रतन हैं। इतना ही नहीं, और भी बताओ आपको पुण्य क्या चीज है। देखो मधुबन में 18 जनवरी को एक केला, एप्पल, खजूर, 2-2 खजूर और ऐसा फल देते हैं, और गाजर का दूध। शांतिवन में नहीं देते थे पहले शुरू में। तो बात चल रही थी, एक भाई बैठा था हमारे सामने, तो उसने कहा कि भाई जी वो मधुबन जाना है। अरे हमने कहा यहां भी, यहां तो कुछ भी नहीं, मधुबन में उधर फल आहार है, ये है, सब जाना है। तो ये भाई ने सुना, वो भाई गया, तो वो पोस्ट ऑफिस में काम करता था ऑर्डिनरी, 5,000 रुपए पगार है उसको। भाई जी मधुबन शांतिवन भी नहीं कर सकते ऐसे, ऊपर कर सकते, इधर भी ऐसे करना चाहिए। हमने करना चाहिए, यहां बहुत लोग है, वहां थोड़े है, नहीं यहां भी हो सकता है। तो कहा गुजरात में कांडला पोर्ट है, वहां अरब कंट्री से स्टीमर भर के खजूर आता है, स्टीमर भर के आता, और वो इधर से सप्लाई होता सबको। तो उसने कहा वहां बहुत सस्ता है। तो हमने कहा सस्ता है वहां से कैसे, कहते मैं भेज दूंगा। हमने कहा आपका तो 5,000 रुपया पैसा है, नौकरी है, तो 1 महीने 2 महीने का 10,000 लगेगा। साधारण व्यक्ति के मन में संकल्प, उस दिन से शांतिवन शुरू किया। वहां भी अभी 2-2 खजूर केला, उधर भी इतने होने के बाद भी 10-15,000-20,000 होते हैं। तो एक साधारण व्यक्ति कैसे पुण्य कमाता है, बड़े करोड़पति नहीं। तब बाबा ने आज कहा गरीब बाबा के बच्चे ही है ना, गरीब बच्चे है तो वो कमाते हैं, वो सब कुछ करते। बाबा कल व्यवस्था बताया क्या करता है, बच्चे 5 पैसे दे दो आप, तुम अपने परिवार को भी देखो। दान करने की तरीका बताता है। आज मुरली में कहा एक एक हीरे की मुट्ठी भर के दे सकता है, और ये 100 रुपए कमाता है उसमें भी 10 रुपए देता है। अपने परिवार गरीब है, खाने के लिए भी कुछ नहीं है, कपड़े भी ऐसे हैं, ऐसे बाबा के बच्चे हैं, गुप्त, किसी को पता ही नहीं है ये कैसे चलता है। आप पूछेंगे मधुबन शांतिवन सभी कैसे चलता है, कैसे गुप्त दान करने वाले हैं, न उनका नाम है, न पद्मा पदम भाग्य जमा करता है। ऐसे आप देखो शुरू में जब बैगरी पार्ट चला 12 बजे तक कुछ नहीं था, तो दादी जाती थी, यशु दादी जाती थी, मम्मा जाते बाबा 12 बज गए, 300 350 400 बाबा के बच्चे अभी तक कुछ नहीं, एक पैसा भी नहीं, बच्चे ठहरो पोस्टमैन आने दो, कौन भेजेगा। ऐसी एक माता ने पोस्ट में भेजती थी, बाबा जानता था, इस माता ने भेजा। तब बाबा ने, बाबा बॉम्बे में था, हॉस्पिटल में था, उस समय भी उस माता को फोन से मुरली सुनाता था, भगवान भी उसका ऋणी है। उस माता ने ऐसे समय पर दान किया, किसी को पता, वो ऐसी माता है, किसी को कौन है पता नहीं। लिफाफा खोला तो लिफाफा के अंदर आया, बाजाओ मार्केट से अनाज लेके आओ। ऐसे गुप्त माता है, गुप्ता तब भारत माता कहा। तो बाबा ने कहा मैं ऐसे बच्चों का ऋणी हूं, भगवान को भी ऋण है, तो उसको जब जरूरत पड़े तो मदद कर। गुप्त किसी को नाम ही नहीं है, तो ऐसे पुण्य कमाते हैं, ये दिखाई नहीं देता है, और किसी को उनका भी कुछ नाम कुछ नहीं चाहिए उनको, तो ऐसे गुप्त। अब कहा गायन है, इस हाथ से दिया हुआ, इस हाथ से नहीं। आजकल भंडारे में डालते हो मेरा नाम होना चाहिए, किसी को हाथ में देते हो मेरा नाम लिख के देते हो, मैंने दिया है। तो नाम, तो ये दान है, दिख दान करता है, मुझे कुछ मिलना है, और जो पुण्य करता है उसको कुछ नहीं चाहिए, निस्वार्थ पुण्य करता है, लेकिन उसका पद्मा पदम भाग्यशाली बनता है वो। देने वाले भी किसी उसको भी लगता है इनको सब कुछ देना चाहिए, तक का दिल खोल करके देता है। तो सेवा जो भी करते हो, अगर आप पूछेंगे, अभी आप भी पूछेंगे, भाई जी आप इधर बैठे हैं, हमको नीचे बैठा है बिठाया आपने, ये भी निस्वार्थ सेवा का फल है, मैं इधर बैठा हूं। ऐसे नहीं, निस्वार्थ सेवा। आज से 50 साल पहले बॉम्बे में छोटा सा सेंटर था, तो बैठने तो जमीन पर कारपेट डाल के बैठते थे, तो एक दूसरों को लगा करके। और मैं कभी कभी आता था, क्योंकि अब 2-3 सेंटर थे नजदीक, तो मैं देखा एक घंटा जमीन पर कारपेट पर बैठो, पाव दर्द करता है, तो क्या करना चाहिए। तो रोज 2-2 नैपकिन लेके आता था, पाव के नीचे डाल के बैठ गया। कभी 2 दिन आता था उधर एक सेंटर में, उसके बाद दूसरा था। तो एक दिन दूसरा भाई भी बाजू में बैठा, वो भी लगा के बैठता है, मैं अच्छी तरह से बैठा तो वो उसको पाव दर्द करता, पाव हिलाता, मुझे भी हिला देता है। अब मैं उसके लिए क्या करूं, मैं अच्छी तरह से योग में बैठना चाहता हूं, और 2-2 मिनट में वो पाव चेंज करता, मुझे भी हिला देता है, मैं उसके लिए क्या करूं, मुझे भी योग करने नहीं देता है, वो भी बैठता नहीं है, अब उसके लिए भी नैपकिन लेके आऊं। और मुझे पता है मैं 1 या 2 दिन आता, तीसरे दिन नहीं, तो क्या करूं बताओ। तो विचार आया, छोटी सी बहन थी, मुरली सुना रही थी, हमने सोचा विचार है ना, तो कभी मैं आता हूं चला जाता फट से। तो उस दिन लगा, बहन जी एक सेवा थी बताइए। हमने कहा कितना भी खर्चा हो, यहां गद्दी डालो या फॉर्म डालो, ठीक है मैं दीदी को बताती हूं। गया मैं, उसी समय तीन दिन आया, दूसरे दिन देखा उन्होंने गद्दी डाल दिया, और तीसरे दिन मुझे कहा 2 मिनट ठहरो, दीदी मिलना चाहती है। हमने देखा आई नहीं, 1 मिनट रुका, 8 बज गए, चला गया। चौथे दिन फिर आया, तब कहा एक भाई बहन टीचर मधुबन जा रही है, तो आप उनको छोड़ने जाएंगे। हमने कहा नहीं, मैं बहुत बिजी हूं, नहीं जा सकता। लेकिन जैसे कमरे घर में पहुंचा, रात को नींद ही नहीं आई, आपको 2 रोटी खाना है कि भगवान चाहिए, 10 करोड़ रुपए चाहिए कि भगवान चाहिए। तब का हमको तो भगवान चाहिए, कि कॉलेज पढ़ते समय से ज्ञान में चलते थे हम, लेकिन निकल नहीं सकते थे उस समय, तो क्या करे। हमने कहा 2 ही दिन जाना है, देखेंगे। हाँ कहा मैं जाऊंगा, और मधुबन में आया। उस समय भी कुछ भी नहीं था, शांति स्तंभ पर खाना खाते थे, शांति स्तंभ के आंगन में वहां खाना खाते थे, और कुछ नहीं था। तब 85-40 थे मधुबन में, 5 किलो की खिचड़ी बनती थी। और उस समय मैं आया, 8 महीना मधुबन में रहा पहली दफा। उससे पहले मैंने कभी सेवा क्या है, मैंने कहीं सेवा भी कुछ भी नहीं किया, सेंटर कुछ पता ही नहीं है। 8 महीना रह गया। आप पूछेंगे क्यों? भगवान निस्वार्थ भाव से सेवा को, तो मेरे लिए नहीं किया मैंने कुछ, दूसरों उसको भी सुख मिलना चाहिए, मेरे लिए मैंने अब किया, औरों को सुख मिलना चाहिए, इस भावना से उधर कुछ किया। तो निस्वार्थ भाव से अगर सेवा करते हो, भगवान अपने दिल में बिठा देता है। नहीं तो आज तक भी मैं सोच ही नहीं सकता हूं कि हम भी कोई मधुबन में आके सेवा कर सकते हैं, आज तक भी नहीं सोच सकता हूं। कुछ कर सकते हम नहीं। तो अगर निस्वार्थ फल सेवा करते हो, भगवान दिल में बिठाता है, तब कहते छप्पड़ फाड़ करके देता है। और आने के बाद बाबा ने भी ऐसी सेवा कराया, हमको भी पता नहीं था। तो यहां मुरली हाथ से लिखते थे, एक बहन होती थी वो लिखती थी कार्बन डाल करके, तो एक मशीन पड़ा हुआ था। तो एक भाई आया कि हमने सुना आप इंडस्ट्री चलाते हैं। हमने कहा नहीं, मैं नहीं चलाता हूं। तो एक मशीन है, आप देख लो। तो देखा, अरे तो प्रिंटिंग प्रेस है। तो उसको हाथ कार्बन से हाथ काले होते थे, मशीन चालू करके मुरली प्रिंट करके दिखाया। और दीदी आती थी, दीदी सामने देखने आती थी रोज, खड़ी हो गई, दीदी आपका भी फोटो निकलेगा, इसमें फोटो निकलेगा। हमने कहा हाँ। दीदी खड़ी हो गई, ज्ञान मुरली करके प्रिंट कर शुरू किया। सबसे पहले मधुबन में ज्ञान मुरली। तो एक मशीन पड़ा था इसे, पता नहीं था किसका क्या है। फिर एक जगह पर आग लगी तो पानी डालने लगे। अरे पानी से आगे थोड़ी, मैं फटाफट फैक्ट्री से 2 सिलेंडर मंगाया, नहीं तो ला नहीं सकते ट्रेन से। और आग कैसे बुझाना है गैस से, पता नहीं था इधर। तो ऐसे बाबा कर्म कर, निस्वार्थ सेवा करो, भगवान तब का भाग्य विधाता के लिए। मेरे लिए नहीं, मुझे इच्छा भी नहीं थी, मुझे पता भी नहीं था मधुबन भी सेवा कर सकते हैं, हमने कभी सोचा भी नहीं। तो निस्वार्थ सेवा करो, मेरा नाम मेरे लिए, ये मैं और मेरा, ये दुख का सबका कारण है। कुछ भी करो, मेरा नाम, मेरा फोटो, मैं आया चला गया, आज नहीं तो कम, आज महिमा होंगी, सोने का ताज भी मिलेगा, कल खत्म, थोड़ा दिन के लिए। तब कहा कि हम वर्तमान देखते हैं, त्रिकालदर्शी, अभी नहीं, कच्चा फल नहीं, पकने दो, धीरज रखो का सेवा करो, निस्वार्थ भाव। ये सबसे साध्य नहीं है जो आज बाबा ने मुरली में कहा। क्या कहा? तपस्या क्या है, तपस्या क्या है, बहुत सारी बातें बताया। मौज है, किसके लिए मौज है, किसके लिए मौज है, उसका एक शब्द बताया। तपस्या खेल है, मौज है किसके लिए, जिसके पास जो सर्व मास्टर सर्वशक्तिवान है उसके लिए। ये शब्द आगे बताया, उस पर ध्यान नहीं जाएगा आपको। तपस्या मौज है, विघ्न समस्या आएंगी, खेल है, किसके लिए, सबके लिए नहीं, जिसके पास सर्व मास्टर सर्वशक्तिवान है उसके लिए खेल है, उसके लिए मौज है। तपस्या से ऐसी शक्ति भरी है, कोई इंसल्ट करता है, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ दुख देता है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन आप अचल अडोल हो। क्यों? आपके पास जैसे आग लगी, अरे ये आग के अंदर जा रहा है, कैसे जा रहा है ये, इसने तो जैकेट पहना है, इसको आग कुछ नहीं कर सकते, आप भी जाओ आपको तो जला देंगे। तो उसने जैकेट पहना है, अग्नि प्रूफ है, इसलिए जिसके पास ये सर्व शक्ति आया है, तो कितना भी कोई गुस्सा करता है, कोई कुछ परेशान करता है, सब सहन कर सकता है, पावर है। तो उसको कहा मास्टर सर्वशक्तिवान अगर है तो उसके लिए मौज है, उसके लिए खेल है विघ्न, सबके लिए नहीं। तो वो देखना है, क्या मेरे अंदर ये शक्ति है, मेरे अंदर एक अगर किसी ने थोड़ा इंसल्ट किया तो क्या आपके मन में विचार नहीं चलेगा, चुप रहेंगे आप? हां, मुख से चुप रहेंगे। उसकी भी मैं प्रैक्टिकल प्रूफ बताता हूं। देखो, आज से 20-25 साल पहले होंगे, मधुबन में एक बहन है, तो उसको लगता उनका पिताजी भी था मधुबन में, और वो समझते थे मधुबन हमारा है, इतना उनको यह था। और बहुत सेवा आज भी करते हैं, सब कुछ मधुबन में वो करते हैं, अधिकार समझते थे। उसको कोई चीज चाहिए थी, उसने हमको बोला भाई जी मुझे ये चीज चाहिए, तो हमने कहा ये मेरे पास नहीं होता है, ये इनके पास है, मैं उनको बताता हूं, वो आपको देगा, इतना ही हो गया। अब उसके जाने का समय आ गया तो उनको वो चीज उन्होंने दिया नहीं, मैंने तो उनको बोला था। अब वो मेरे सामने आए, आपने क्या समझा हम भिखारी है, हमारा घर है, हमारा बाबा है, इतनी चिल्लाने लगी, इतनी गुस्सा, लाल पीला हो गया। मैं हंसता मुस्कुराते रहा, बहन जी मैंने क्या करना चाहा, मैंने तो उनको बोला था, उन्होंने नहीं दिया तो मैं क्या करूं, अभियोग लगाऊं। ओम शांति। तो प्रश्न आया, जब देखा आकर के इतने जोर से लाल पीला हो गए, उसको जाते समय वो चीज मिली नहीं, हमने कहा मेरे सामने आए, बहुत गुस्सा करने लगे, और साधारण व्यक्ति नहीं, तो वो हमने कहा बहन जी मैं क्या करूं, मैंने तो उनको बोला, मैं हंसते, मेरा कोई दोष नहीं है, उनको देना है, उसने नहीं दिया तो मैं क्या करूं, इतने लाल पीला हो गए, गुस्सा करके चल गया, मैं हंसता रह गया। हो गया, शाम को मैं वॉकिंग करने जा रहा था तो वो सामान लेके आंगन में मधुबन में खड़ी है, रामनाथ भाई आप हमारे पास कब आएंगे, हमने कहा जब आप बुलाएंगे तब आऊंगा। सबसे ज्यादा उसी सेंटर में, उसी जोन में गया, सबसे ज्यादा आज तक भी। और इतना नहीं, और आगे देख लो मनुष्य को रियलाइज कैसे होता है। और मधुबन में ग्लोबल हॉस्पिटल में वो बीमार है, बेड पर है, बहुत बीमार है। उनकी ब्राह्मणी आई मधुबन में, हाथ में थैली में फल लेकर, भाई जी दीदी ने दिया है। हमने कहा आपने सुना नहीं होगा मैं बीमार नहीं हूं, दीदी को फल दे दो कहा होगा किसी ने, आप भूल से इधर लेके आए। नहीं भाई जी, दीदी ने खास बेड पर है, खास का ये फल जाके मधुबन में रामनाथ भाई को देके आओ, हमने ठीक सुना नहीं आपने, ये फल हमको थोड़ी देना, बीमार व्यक्ति को खाना है। तो मैं नहीं, आप लोग किसी ने कहा होगा दीदी को दे दो, आप इधर लेकर। नहीं भाई जी, खास मुझे बुला के कहा देके आओ। बीमार होते हुए भी मनुष्य को रियलाइज, बाबा कहता है रियलाइज कराने का तरीका है सहन करो, जो कहा सहन तो कर लिया, अंदर चलेगा, नहीं मुझे कोई दोष नहीं, मेरे अंदर कुछ भी नहीं, पता भी नहीं था, क्योंकि मेरा कोई दोष नहीं था उधर, और हंसता रह गया मैं। लेकिन उनको रियलाइज हुआ तो किसी, तब बाबा ने कहा अगर किसी को रियलाइज कराने का तरीका है सहन को, सहन कर इतना नहीं, अंदर भी नहीं चलना चाहिए, तो कब चलता है, अगर मेरा कोई दोष है तब चलेगा, मेरा कुछ नहीं था। आज तुम कितना भी गुस्सा लाल पीला होगी, और उस सेंटर में, उस जोन में हर साल, इतने सालों में हर साल बुलाते हैं, हर साल सेवा किया, बुलाती है। मनुष्य को रियलाइज होता है, मिस्टेक्स करते हैं, होता है, उसको रियलाइज कैसे करे, तब का आपका दिल साफ स्वच्छ, आपने कोई, आपके अंदर कुछ नहीं। अगर आप सच्चे हो ना विचार चलेगा ना फीलिंग आएंगी। तब कहा कि इसको पुण्य कैसे अब जमा होता है, तो इसके लिए बाबा ने आज एक मुरली में पॉइंट सुनाया। अगर आप सोचना, क्या सुनाया, कौन बताएगा? सिंपति, ये संपत्ति है, मन तन और धन। अरे किसी को क्षमा करने से मन धन कैसे होगा, धन कैसे मिलेगा, तन कैसे होगा? ठीक, तन मन, तन मन धन, तीन शब्द किया। सिंपति, सिंपति करने से कैसे मिलेगा, सोचना मुरली। ये ज्ञान ऐसा है, अंदर जाओ तो सागर है, लेकिन ये कौन कर सकता है, जिसकी बुद्धि स्वच्छ चाहिए। अभी हम ज्ञान सुनते हैं, नोट करते हैं, न चिंतन करते, न वर्णन करते कभी, और पढ़ने से सुनने से भी कुछ नहीं होगा। लिस्निंग रीडिंग इज नॉट एवरीथिंग, सुनना पढ़ना सब कुछ नहीं है, सुनने के बाद एक ही शब्द, अगर आज अच्छी तरह से मुरली पढ़ते हो, कुछ नहीं, बहुत मुरली नहीं चाहिए, एक शब्द ले लो। आज बाबा ने कहा सिंपति या संपत्ति है, ये संपत्ति कैसी होंगी, सिंपति माने दया करो, उन्होंने गुस्सा किया, उन्होंने कुछ किया, दया कोर्ट छोड़ दो, माफ करो, दया करो, उससे तन मन धन की प्राप्ति होंगी। कैसे होंगी, कभी सोचा किसी ने, सोचा लिखा, पहले भी आया था ये, और थोड़े दिन पहले भी आया था, तो सोचा इसके अंदर ये तीनों है, सोच लो आज भी। तो ये जो मैंने उदाहरण दिया, देखो उन्होंने बहुत कुछ किया, मैं हंसता रहा खुश, मुझे तो कोई चिंता ही नहीं। तो तन जैसे सोचेंगे वैसे बनेगा। अगर उन्होंने कुछ बोलने के आपके मन में कुछ चलेगा, जैसे सोचेंगे ऐसे शरीर के अंदर रस निकलता है। तब कहा आज कैंसर की बीमारी जो आई इसी के कारण, कैंसर कुछ नहीं है, जर्म्स बन जाता है। अगर कहीं कुछ सड़ा है तो वहां जर्म्स बनते हैं। तो खाना जो हम खा रहे हैं वो कौन हजम कर रहा है, कौन शरीर को साफा करता है? अगर इनकी बुद्धि स्वच्छ है, और इनके घर में जाओ मच्छर भी नहीं कहीं, एकदम साफ स्वच्छ मिलेगा। क्यों? दिल साफ है, अंदर सफाई है तो बाहर भी सफाई है। अगर आपके बुद्धि में कोई गलत चीज नहीं, क्यों, ये सारे शरीर को बुद्धि चलाती है, मन नहीं, बुद्धि चलाती है। रात को आंखें बंद करके सोते हो, कौन देखता है टीवी? टीवी देखते हो? हाँ, रात को टीवी देखते हो आप? देखा है, रात आंखें बंद करके देखते हो, आंखें बंद करके टीवी देखते हो, स्वप्न नहीं देखते हो? स्वप्न कौन देखता है? आंखें बंद है, स्वप्न तो आते हैं ना, वो अंदर क्या है, कौन? बुद्धि नेत्र देखता है। ये सारे शरीर को कौन चलाता है? हार्ट कौन चलाता है? हजम कौन करता? रात को खाना खा के सो गए आप, बुद्धि सब कुछ करती है। अगर जो मुरली सुनी एक शब्द बस, जैसे आज बाबा ने कहा, वो बुद्धि में जाना चाहिए, वो जाता नहीं है। आपने सुना लिखा कोई काम का नहीं, सुनते सुनते आज बाबा ने बहुत अच्छी बात बताया, संपत्ति संपत्ति है। अपने आप से पूछे, बात कर रहे हो, संपत्ति कैसे होंगी? किसी को दया किया, क्षमा किया, संपत्ति होंगी? अपने आप से पूछते हो, इधर से नाश्ते तक गए, आज बाबा ने ये क्या कहा, तन धन भी मिलेगा उससे, किसी को क्षमा करने से धन मिलेगा, कैसे ये? तो एक भाई मिला, उसको भी आपने कहा, आज देखो बाबा ने बहुत अच्छी बात बताया, संपत्ति करने से ये संपत्ति है, इसके तन मन धन सबकी प्राप्ति होंगी। उसके मन में भी डाल दिया, वो भी सोचेगा ये कैसे। तो सवेरे से रात तक एक ही शब्द, एक ही पॉइंट लिया, आपके अंदर भी आप भी घोट रहे हो, इसको कहा मंथन। ये बुद्धि करती है। अगर बुद्धि के अंदर ज्ञान गया तो आप औरों को भी सुनाते हो, मन में जान सुनने से नहीं, बुद्धि के अंदर है तो औरों को भी सुनाते हो। तो ये जो बुद्धि में चला ज्ञान, उसको विजडम कहते हैं। बुद्धि के अंदर ज्ञान गया तो ज्ञान युक्त शरीर चलता है, ये ज्ञान से शरीर चलाता है। जिसके अंदर ज्ञान क्या, अगर आपको जैसे कहा किसी को एक चीज गलत देता है, खाना चाहिए, तुरंत बुद्धि कहेंगे नहीं खा लो, बुद्धि समझाती है ये नहीं देखना, ये ठीक व्यक्ति नहीं है, क्योंकि बुद्धि के अंदर ज्ञान जाना चाहिए। बुद्धि शरीर को रोकती है, ये देखना नहीं, ये खाना नहीं, ये सुनना नहीं, कौन देख रहा है, कौन खा रहा है, कौन कर्म करता है। बुद्धि के अंदर ज्ञान जाना चाहिए, और बुद्धि के ज्ञान तब जाता है जब आपने सुना, पढ़ा नहीं जाएगा, सुनने के बाद अपने आप को पढ़ाओ। तब दुनिया में कहते हैं औरों को पढ़ाना सबसे सहज काम है, और सबसे कठिन है अपने आप को पढ़ाना। तो कौन किसको पढ़ाएगा? आज देखो बाबा के बच्चों में भी किसी को भी बुद्धि का ज्ञान नहीं, मन का ज्ञान है। मन लगाओ, मन एकाग्र करो, सारी दुनिया ब्रह्मा कुमारी इसके अंदर यही एक ही विशेषता है और कुछ नहीं है। जो ईश्वरीय विश्वविद्यालय कहा उसको, यहां कौन सा विद्यालय, क्या पढ़ाते हो? जो दुनिया में सारे विश्वविद्यालय में कहीं नहीं पढ़ाया, कोई शास्त्रों में भी नहीं, कहीं भी नहीं है, वो एक ऐसा ज्ञान स्वयं भगवान आके पढ़ाता है, बुद्धि का ज्ञान। साइंस ने पढ़ाया कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस, बुद्धि कहां है? आज कॉलेज में जाओ, फोकस ऑफ माइंड इज कॉन्सेंट्रेशन, मन लगाइए, बुद्धि कहां? एक ही भारत देश है, एक हाथ से नमस्ते नहीं करता है, दो हाथ जोड़ता है। तब बाबा ने भी यहां कहा ब्रह्मा कुमार इसके अंदर राजयोग क्या है बताओ, राजयोग क्या है? आप एक ही शब्द है, आत्मा समझ मुझे याद करो तो विकर्म विनाश हो जाएंगे। इधर क्यों आए हो? विकर्म विनाश करने आए हो। सारे कल्प में ये सब नहीं हुआ, सब कुछ हुआ है, किसी को मकान मिला, किसी को और कुछ मिला, किसी को और कुछ मिला, विकर्म विनाश कोई नहीं कर सकता। तब ब्रह्मा कुमार इसके अंदर एक ही राजयोग है, आत्मा समझ मुझे याद करो तो मेरे शक्ति से विकर्म विनाश होंगे, एक ही है। तो इसके लिए उसका ज्ञान चाहिए, तो ये बुद्धि में गया। आज बाबा ने कहा शब्द तो उसका मंथन चलता है, चिंतन चाहिए। कैसे होगा? सवेरे से रात तक आप भी सोचते रहेंगे, औरों को भी पूछते रहेंगे। तो बुद्धि में ज्ञान गया, तो बुद्धि के अंदर ज्ञान गया, बुद्धि सारे शरीर को चलाती है, ज्ञान युक्त शरीर चल रहा है। अगर जिस बुद्धि में ज्ञान गया वो गलत देखना देंगे आपको, बुद्धि रोकती है ये नहीं देखना, तुरंत बोलेंगे। बुद्धि मन को समझाती है, मन नहीं समझा सकता है तो मन चंचल है, अरे खा लो कोई अर्जा नहीं, कोई देखता नहीं। बुद्धि को समझ है, याद है, शुभ बाबा देखता है, वो उसके अंदर ज्ञान का, वो आपका हाथ को रोकेगा। जो बहन जी कह रही थी, बाबा मीन्स ये टचिंग कहते आपको, आप कहते हो टचिंग हुआ, तो बुद्धि के अंदर ज्ञान है, वो रोकता है, इधर नहीं देखना, ये नहीं खाना, ये नहीं करना, बुद्धि के अंदर चाहिए। तो बुद्धि समझा, तब बाबा ने कहा यहां बुद्धि योग, एक शब्द यूज किया, क्या? याद। याद मन को रहती कि बुद्धि को रहती है? याद किसको है? बुद्धि को, मन को नहीं। इसलिए बाबा ने याद शब्द का, योग भी नहीं, याद बुद्धि को, बुद्धि योग है। अगर बुद्धि स्वच्छ हुई, बुद्धि के अंदर ज्ञान गया, वो मन कितना चंचल हो, कितने कठोर संस्कार हो, उसको भी परिवर्तन कर देगा, रोकेगा, मन को भी रोकेगा, बुद्धि संस्कार को भी, बुद्धि सब कुछ। तब कहते हो मेरा मन, कौन कहता है मेरा मन, मैं कौन? वो बुद्धि बोलती है, ये मेरा मन चंचल है, ये मेरा मन अशांत है, मेरे संस्कार ऐसे है। कौन कह रहा है? बुद्धि कहती है। तो यही इस ब्रह्मा कुमारी इसके अंदर, ईश्वरीय विश्वविद्यालय के अंदर एक ही चीज जो सारे विश्व के अंदर किसी ने नहीं सुनाया आज तक भी, यूनिवर्सिटी में भी नहीं, कॉन्शियस एंड सब कॉन्शियस, बुद्धि कहां है? तब आप कहते हो तनाव, डिप्रेशन, ये शब्द आया। अगर किसी आपको देखते मेरे मन में गलत विचार आ रहा है तो कौन समझाएगा मुझे? आप कहेंगे मुझे विचार गलत आ रहे, मेरे मन अशांत है, बोलते रहेंगे? नहीं, ब्रह्मा कुमार इसके आने के बाद बुद्धि के अंदर ज्ञान गया, मन को समझ, तुम ऐसा देखना नहीं, ऐसा सोचना नहीं, अपने आप को पढ़ाने, इसलिए स्वपरिवर्तन कहा। औरों को परिवर्तन नहीं करने जाना, इसको सकाश देना जाना नहीं, पहले अपने को। आज का स्वराज्य अधिकारी है तो विश्वराज अधिकारी, पहले स्वयं के ऊपर अधिकार करो। ये तपस्या आपको अधीन नहीं बनाती है, अधिकारी बनाती है। अपने आंखों पर अधिकार, ये नहीं देखना है। मोबाइल में गलत चीज आती है, आएंगी, मुझे नहीं देखना है। कौन सिखाएगा? किसको पता है मोबाइल में गलत देख रहे हो, क्या कर रहे हो, किसको पता है? आपको कौन रोकेगा? आपकी बुद्धि, जो बुद्धि ज्ञान युक्त, ज्ञान गया तो आपके ये नहीं खाना है, कौन रोकेगा आपको? बुद्धि के अंदर ज्ञान गया, वो कहेगा नहीं खाना है, कितना भी कोई कहे नहीं जाएगा। उसको इंग्लिश में कहते हैं अनलेस यू रियलाइज देयर इज नो चेंज। 100 दफा इनको कहो गुस्सा नहीं करो, गुस्सा नहीं करो, कोई असर नहीं पड़ेगा। उसको एक दिन लगेगा, अरे ये गुस्सा करने से ऐसे हुआ, उसने महसूस किया, उस दिन ब्रेक लगेगा। इसलिए कहते हैं एक क्रूर प्राणी को भी प्यार करो, वो आपको कभी भूलेगा नहीं। मनुष्य को कितना भी प्यार करो, कल आपको लूट के जाएगा, क्योंकि उसके पास बुद्धि है। बुद्धि को कोई नहीं पढ़ा सकता है, कोई नहीं समझा सकता है, उसने समझना है। इसको कहा अनलेस यू रियलाइज देयर इज नो चेंज। जब तक आपने महसूस नहीं किया ये मुझे करना है, ये खराब है, ये सही है, तो आप चेंज करेंगे? इस बुद्धि को कोई नहीं पढ़ा सकता है। इसलिए कितना भी सुनो आप, इसलिए ये व्यवस्था चाहिए, जो मुरली सुनते हो एक शब्द ले लो, भगवान के एक बूंद के प्यासे, दो भी नहीं चाहिए, रोज एक एक बूंद ले लो, 30 दिन में 30 बूंद आपके जीवन में आएंगे। अगर अंदर बुद्धि में गया वो ठहरेगा नहीं दान करने के बगैर, कभी नहीं रहेगा, क्योंकि अंदर बुद्धि में है, बुद्धि का व्यवस्था है, तो जरूर दान करेगा, सुनाएगा, आज बाबा ने ये कहा, आज बाबा ने ये कहा, सवेरे से शाम तक। अगर पद्मा पदम भाग्यशाली बनना चाहते हो, पुण्य कमाना चाहते हो, तो ये कमाई करो। तब बाबा ने कहा, बाप भाग्य विधाता है बच्चों का, पद्मा पदम भाग्यशाली बनाना चाहता है, पद्मों की कमाई छोटा नहीं, तो उसके लिए का ज्ञान दान करो। किसी को खाना दिया आपने, हॉस्पिटल बनाया। हमको याद है शुरू में बॉम्बे में उषा बहन और रमेश भाई, तो उनके सेंटर में था, तो उन्होंने कहा एक बहुत बड़ा व्यक्ति से आपको मिलना है। हमने कहा ठीक है, बैठ गया आके। तो ये बहुत दान करता है। हमने कहा आप मिला है, कितना भी कहो। हमने कहा आप आधा दान करते हो, पूरा नहीं करते हो। नहीं, 25 लाख भी हो, कहीं बाहर भी दवाई भेजना हो, मैं करता हूं। हमने कहा नहीं, आप आधा दान करते हो, पूरा नहीं करते हो। तो कहा कैसे, जितना भी आप कहो मैं कर सकता हूं। नहीं, फिर भी आप आधा करते हो। तो चकित हो गया। तो हमने आपको उसको कहा, आप शरीर को ठीक करते हो, किसी ने शराब पी के गाड़ी चला रहे, कार एक्सीडेंट हो गया, पाव टूट गया, हॉस्पिटल में डाला, आपने उसको नया पाव बना के देके ठीक किया, कल अच्छा हो गया, फिर से कार चलाने लग गया, लेकिन शराब पी के फिर से गाड़ी चलाता है, फिर से एक्सीडेंट करेगा। आपने शरीर को ठीक किया, जीव को ठीक किया, आत्मा को ठीक नहीं किया, तो आधा दान किया। तो जीव और आत्मा दो है, तो दोनों को दान करो, उसको ज्ञान भी सुनाओ और शरीर भी ठीक करो। आपने नया कार दिया लेकिन ड्राइवर तो वही है, फिर से एक्सीडेंट करेगा। तो जीव और आत्मा दो है, इन दोनों को ठीक करो। तब आप किसी को खाना देते हो, किसी को कुछ देते हो, तो उसको ज्ञान भी सुनाओ। दोनों देना है, जीव और आत्मा दो है, एक नहीं है। हम शरीर को देखते हैं, शरीर को कुछ खाना देते हैं, आत्मा के स्वभाव संस्कार। इसलिए आज बाबा ने कहा, आपके चलन और चेहरे से, चलन चलन कब ठीक होंगे हमारी, नहीं तो पुरानी चलन वही है, जो कल चलते थे वो आज भी है। तब कहा हू बहु रिपीट, ज्ञान सुनते हो, रोज मुरली सुनते हो, रोज योग करते हो, फिर गुस्सा भी रोज करते हो, तो ज्ञान योग करके फायदा क्या है, क्या परिवर्तन हुआ। तब कहा बुद्धि में ज्ञान जाना चाहिए, तो बुद्धि परिवर्तन करती है, ये याद रखना। एक ही शब्द बस, दो भी नहीं चाहिए। अगर आज बाबा ने बहुत कुछ कहा तो आपको अपील हुआ, स्वीकार हुआ, आज बाबा ने बहुत अच्छी बात किया, ये मुझे करना चाहिए। मुरली सुनते सुनते निर्णय करो। अगर वो बुद्धि में गई, यहां से बाहर जाते किसी को देखा, उसको आप जरूर सुनाएंगे, क्योंकि बुद्धि में जो गया वो जरूर बाहर आएगा, आचरण में आएगा, आपके अंदर मंथन चलेगा, तो आपके सारे जीवन को वो परिवर्तन करेगा। इसको कहा स्व परिवर्तन। नहीं तो आप चाहो मुझे गुस्सा छोड़ना है, दिन रात तपस्या करो, जाएगा क्रोध? नहीं जा सकता है। तो बुद्धि के अंदर पावर है। तब कहा बुद्धि योग जोड़ो। बुद्धि के अंदर पावर आया तो वो बुद्धि, मन कितना चंचल हो, कितना खराब हो, संस्कार मेरे कितने कठोर हो, आप जानते हो पंचम सिंह जैसे डाकू क्या था, कितने लोगों को मारा, आज क्या से क्या बना। वो कहता मैं ब्रह्मा बाबा हूं, मैं बाबा जैसे बनूंगा। बुद्धि के अंदर गया, कभी ऐसे बैठना नहीं कि बाबा ये कैसे हो रहा, बुद्धि के अंदर भरो, ये कैसे, एक ही बूंद, दो भी नहीं लेना, रोज एक एक बूंद भरो। संभव है कि कठिन है? पुण्य कैसे कमाना है और दान किस करने से क्या होता है? दान अल्प काल के लिए दिखावा है, मेरा नाम होना चाहिए, नहीं, इस हाथ से दिया हुआ, इस हाथ को पता नहीं चलना चाहिए, इतना है। इसको कहा पुण्य। तो पद्मों की कमाई जमा कर सकते हो आप, साधारण देखने के लिए क्या से क्या बन जाते हैं। इसलिए बाबा ने उदाहरण दिया, किसका दिया, सुधामा का। क्या देखा, मुट्ठी भर के चावल, क्या बंदी दे दिया। हां, तो ये बुद्धि मेरे को, दान करो, सेवा करो, लेकिन मैंने किया ये भी औरों को भी बाजू वालों को भी पता नहीं चलना चाहिए, मैं और मेरा नहीं। जो माता जी ने कहा मेरा तो कुछ नहीं, बाबा का सब कुछ, फिर भी मेरा नाम आना चाहिए, मैंने दिया था, मेरी पट्टी होनी चाहिए, बाबा ने दिया, भगवान का कहते हैं, फिर भी मैंने दिया मेरा नाम होता है। तो निस्वार्थ दान करना चाहिए, ठीक है। फिर भी आपके मन में और 5 मिनट है, आपके मन में कोई प्रश्न है तो पूछ लो, आपका भी सुनना चाहिए ना जी, नजदीक आओ थोड़ा, हाँ बोलो, आपका भी सुनना चाहिए ना, ऐसे नहीं जो सुनाया वही सत्वचन है जी। क्या क्या? हाँ नहीं ठीक, हाँ ठीक एक्यूरेट, हाँ ठीक है चलेगा। हाँ
मुरली में रोज आता है कि आत्मा एक शरीर छोड़ करके दूसरा शरीर लेती है,
बिल्कुल।
जब आत्मा एक शरीर छोड़ के चल गई तो जीव आत्मा में ही तो हुआ,
हाँ हो गया,
हाँ जी
ठीक है।
हाँ।
अभी प्रश्न पूछना, हाँ हमने कहा जीव माना ये शरीर, इस शरीर के अंदर आत्मा आई ना, शरीर छोड़ के गई दूसरे जीव में, शरीर में गई, तो आत्मा गई, मुर्दे में नहीं गई, आत्मा शरीर छोड़ के गई तो दूसरे शरीर में, मुर्दे में गई नहीं, जीवित शरीर में,
जीवित।
हाँ तो जीव आत्मा, जीव माना शरीर,
तो जीव आत्मा एक ही चीज़
नहीं, दो जीव अलग आत्मा अलग है ना, जीव माना प्रकृति, आत्मा अलग, जीव शरीर बन गया उसके बाद आत्मा आती है ना, हाँ तो जीव था पहले, मुर्दे में नहीं आती है
वो, तो स्थूल,
हाँ उसको कहा स्थूल शरीर को जीव कहते हैं, तो ये समझना है। और जी
जिसको प्रश्न पूछना आगे आते जाएंगे, माइक रखा हुआ है,
हाँ जल्दी किसी को पूछना है तो, क्योंकि आपका भी सुनना चाहिए।
ओम शांति भाई, भाई जी आपने परखने की विधि तो बताई, बहुत अच्छी बताई, बहुत ही अच्छी है और बड़ी शीघ्रता से काम करती है, लेकिन जो परखने की शक्ति है उसको कैसे बढ़ाए?
कुछ नहीं करना है आपको, कोई शक्ति कहीं मार्केट में नहीं। अगर आप आया अभी हमसे बात करें कि मैं आपकी दृष्टि देखता हूँ, ये कहा गले में क्या पहना है, जेब में क्या है, वो नहीं देखता हूँ, कोई भी मिले दृष्टि देखना, लेकिन एक स्मृति में रखना मैं कौन, ये याद चाहिए, सिर्फ दृष्टि काम नहीं करेंगे, स्मृति से दृष्टि, तो उसकी वृत्ति उसके सब कुछ चेंज कर सकेंगे, लेकिन वो निरंतर स्मृति नहीं रहती है। फिर भी अगर आप प्रयत्न करेंगे सदा कि मुझे किसी को मिलना है तो ये स्मृति रखना है, स्मृति रखते हुए दृष्टि देंगे तो आपको पता चले, उसको कहते हैं परखने की शक्ति, ये कहीं मिलती नहीं, आचरण करना है, इतनी सहज है, आज कर सकते, अभी भी आप सब कोई मिलेंगे रास्ते पर जाएंगे तो आदत डालो दृष्टि पर, ये काला गोरा लमड़ा के क्या किए नहीं, तो हमारी दृष्टि शरीर पर जाती है, इतना अंतर है। इसी को आत्म अभिमानी और देह अभिमानी कहते हैं, सिंपल चीजें है लेकिन वो आचरण में लाने की विधि चाहिए, ठीक है।
धन्यवाद,
और किसी को प्रश्न हो तो हाँ आते जाएंगे, अभी है 5 मिनट 4 मिनट बाकी है, आते जाएंगे।
हाँ
आ जाओ माता जी, आगे आ जाओ,
नजदीक आओ, सुनाई नहीं दिया जी, तब तक आप बताओ।
अच्छा
हाँ बोलो।
ओम शांति भाई जी, बड़ा प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, जैसे आपने सहन शक्ति का बताया, जैसे हमारे सामने बी के भाई बहन आते हैं, हमें पता है कि ठीक है हमें सहन करना है, या क्योंकि हमारा कार्मिक अकाउंट है। अब जब नॉन बी के आते हैं, ठीक है कुछ टाइम आप सुनते हो, अब क्या होता है कुछ टाइम बाद, एक तो होता है डेलिबरेटली कि हाँ इनमें पेशेंस पावर क्या है, सेकंड उनका संस्कार पक्का हो जाता है, जैसे बोलते ही रहे तो उस सिचुएशन में, जैसे बहुत से बच्चों का ये क्वेश्चन होता है जैसे सेंटर में नए आते हैं कि उस सिचुएशन में क्या करें कि उनका संस्कार पक्का है और वो जानबूझ के इंसल्ट करेंगे 20 लोग 25 लोग, जैसे हमारा ईएमआई सेटल हो रहा है,
वो कैसा भी हो आप तो अच्छा है ना, आपके अंदर तो दृष्टि है ना, आप उसको देखते ही पता चलेगा आपको, वो कैसे भी हो
हाँ, उसमें अथॉरिटी
आपको चेंज करना है, आपको उनको चेंज नहीं करना है,
ठीक है
आपको करना है, उसके नजदीक नहीं जाना है, ये ऐसा व्यक्ति दूर से जाओ, इधर आ गए आपके नजदीक नहीं जाओ, आप अपने को बचाओ
उस सिचुएशन में, मतलब कि जैसे सामने व्यक्ति है तो उससे मतलब वहां रूम छोड़ के जा सकते हैं, पहली चीज है ना,
यस अपने को बचाना है,
अपने को बचाना है,
आपके अंदर स्मृति कभी भी हमारे अंदर क्या हुआ, इनको चेंज करना चाहते हो, ये एक गलत भाग बन गई, दूसरों को नहीं।
तो मतलब सिचुएशन से
आप जैसे बहुत बरसात है, आप छाता लेके जाओ, बरसात को रोक नहीं सकते हो। आग लगी है तो वहां नहीं, जहां आग में कौन जाता है, उसके एग्जाम्पल जिसने जैकेट पहना है, तो आपके पास नहीं है। अगर आपके पास ज्ञान योग है, बुद्धि है, तो इनको देखते ही ये आग है, अपने को बचाओ।
ठीक है, इसमें मतलब दो चीजें, क्योंकि कई कहते हैं जैसे आप सामने हो, आप सामने खड़े रहो, उनको बोलते रहने दो, आपका ईएमआई सेटल हो रहा है, और दृष्टि दो। सेकंड, कि उस सिचुएशन से जा सकते हैं, तो सिचुएशन से तब जाएं अगर हमें लगता है कि अंदर हलचल हो रही है,
अपने को बचाना है।
ठीक है, अदरवाइज उनसे
छोड़ देना, उनका अपना काम करने दो, हर एक का अपना अपना रोल है।
और इसमें जैसे भाई जी, जैसे कई बार मुर्गियां पड़ती है अथॉरिटी रूप, थोड़ा सा खुद में अथॉरिटी लेके आ सकते हैं, जैसे अथॉरिटी, जैसे मान लो वो गलत बोलते रहे तो अथॉरिटी
बोलने दो, अथॉरिटी भी नहीं, यही अहम,
ये अहम है,
ये नहीं। तो अगर आपके पास ज्ञान है तो आप अपने को बचाना सोचो, दूसरों के लिए सोचना नहीं, इतना ही। ठीक है, उनको माइक दे दो, हाँ उनको पहले दे दो।
हाँ, भाई
हाँ,
जी
दे, बोलो।
हाँ दे दिए, माइक दे दिए।
कहा कि हमें उनसे बचना है, लेकिन अभी आपने कहा कि सिंपैथी भी रखनी है, सबसे सद्भावना के बच्चे हैं।
हाँ अभी आया, तो नहीं सुनना, इनके प्रति सिंपैथी माना आपके मन में है, वो गुस्सा कर रहे हैं, वो खराब है, आप अच्छे विचार रखो, अच्छा सुधर जाएंगे। यस यस, भगवान ठीक करेगा, मैं नहीं कर सकता हूँ बाबा, वो आपके बच्चे है, आप देख लो उनको, आपने कहा चुप रहो, बस इतनी सिंपत्ति, और कुछ नहीं है। जी
बहन जी को दे दीजिए
लास्ट। ओके,
ओम शांति भाई जी। मैं दो बार तीन बार जितनी बार भी आई हूँ, एक माता मेरे को 5100 रुपए देती है और कहती है कि मेरे लिए गुप्त दान डाल लेना, उससे हमें बहुत शिक्षा मिली है, हमें भी करना चाहिए। 1100-2000 दे देते थे उनसे, नहीं हमें भी इतना ही करना चाहिए, मेरे को बहुत
दान करके जाओ, उन्होंने कहा करो। ओम शांति, अभी शिव बाबा को दान करो, धन्यवाद दे दो। हाँ, क्यों ज्ञान शिव बाबा का सुनाया, मेरा नहीं है। हाँ धनी, धन्यवाद उसको देंगे ना। ओम शांति,
बैठ जाइए, अभी बैठ जाइए, बैठ जाइए
बाद में
हो गया, बैठ जाइए।